श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। सब लोग एकदम प्रेम से बोलना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोग थोड़ा इधर बैठ सकते हैं क्या, थोड़ा सा और मेरे को उधर उधर देखना पड़ता है। अच्छा थोड़ा इधर। आप सब लोग जानते हैं कि पांडव वनवास में गए थे, जानते हैं ना आप लोग? कितने साल गए थे वनवास पांडव? हाँ, राम कितने साल गए थे? पक्का बोलो, 12, 13 या 14? राम कितने साल गए थे वनवास को, और पांडव कितने साल गए थे? 12, 13 या 14? फर्क पड़ता है ना उसे कि नहीं पड़ता है? चलता है, 12, 13 में क्या फर्क है, एक साल और। ऐसा नहीं होता है, पांडवों को 12 साल वनवास का वनवास प्राप्त हुआ था, और 12 साल वनवास के बाद में एक साल अज्ञातवास, उसमें पकड़े जाएंगे तो फिर 12 साल। तो राम के वनवास में फर्क है। तो पांडवों के 12 साल के वनवास में वो बीच में एक समय पे काम्यवन में थे। कितने लोगों को पता है काम्यवन किधर है? ये ऐसे बोलने जैसा है कि दादर किधर है? अंधेरी में। अंधेरी कहाँ, दादर में? दोनों जगह डिफरेंट है। काम्यवन वृंदावन सेम नहीं है। काम्यवन एक अलग वन है, वृंदावन एक अलग वन है। और आज की तारीख में काम्यवन वृंदावन कम से कम 100 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, तो एक कैसे हो सकता है? तो काम्यवन ये नंबर 2 का प्रिय वन है भगवान का, बहुत सुंदर अद्भुत वन है वो। तो उधर एक जगह है पांडव निवास स्थान, जहाँ पर पांडवों ने तपश्चर्या की अपना वनवास किया था, और उसके पास में एक कुंड है, उसका नाम है यक्ष कुंड। उधर क्या हुआ था? यस, ये हमारा इतिहास है। अभी आपको पूछेगी अमुक तुमुक फिल्म स्टार के कितनी कितनी गर्लफ्रेंड थी, तुरंत बताएंगे आप 1, 2, 3, 4। लेकिन अभी राम को कितना वनवास हुआ तो सोचना पड़ता है, ये हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि जो इतिहास याद करने से हमारा कल्याण हो सकता है उसको हम भूल रहे हैं, और जिन चीज़ों को याद करके पूछ के बोल के कुछ भी फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है, उसको याद रखते हैं। उसके पीछे भागते हैं। तो यक्षकुंड वो है जहां पर एक दिन वनवास में उनको प्यास लगी, तो मैया ने कहा जाओ नकुल, सबसे छोटे हो, पानी लेके आओ। तो वो पानी लेने गया तो आवाज आई, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो नहीं तो मर जाओगे। तो उन्होंने ज्यादा कीमत नहीं दिया उसको, जाके पानी पिया तो मर गया वो। फिर बहुत देर तक छोटा भाई नहीं आया तो माता बोली नकुल अभी तुम जाओ, देखो क्या हो गया। नकुल देखता है अपना एक भाई मरा पड़ा हुआ है, उसको भी आवाज आती है प्रश्न का उत्तर दो, तो वो भी उसको निग्लेक्ट करता है, दुर्लक्ष, पानी पीता है वो मर जाता है। इस तरह से अर्जुन भी आता है, भीम भी आता है, और कोई परवाह नहीं करता है कि मेरे इतने वीर भाई मरे पड़े हुए हैं, परवाह नहीं करते, वो पी लेते, चारों भाई मरे जाते हैं। बोलो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनको मार सकता है, तो उनका जख्म नहीं शरीर पे, कोई वुंड नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मरे दिख रहे हैं, तो फिर भी उनको सावधान नहीं होते वो। फिर धर्मराज को भेजते हैं माता, कोई चार भाई गए लौट के नहीं आए, तुम जाके देख लो। तो धर्मराज जब पहुंचते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो देखते हैं कि चारों भाई, जो दुनिया में कोई भी योद्धा उनको मार नहीं सकता है, ना उनके शरीर में कोई जख्म है, कोई वार किया हुआ दिखता है, और फिर मरे पड़े, मतलब कौन सी महान शक्ति है जो बिना घाव के उनको मार सकती है। तो आवाज आती है मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तो वीर पूछते हैं क्या प्रश्न है आपका। तो बहुत सारा एक अच्छा बहुत बड़ा चैप्टर है महाभारत में, बहुत सारे सुंदर सुंदर प्रश्न किए उन्होंने, और बहुत सुंदर प्रश्न का अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। तो सारे उत्तर सुनकर आवाज जो है ना वो बहुत संतुष्ट हो जाती है, वो कहती है कि अभी मैं आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपको, लास्ट प्रश्न, उसका उत्तर आप दोगे तो आपके चारों भाइयों को मैं जीवित कर दूंगा। वो प्रश्न किसी को याद है? इधर बंद करो, इधर से इधर। वो पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्यकारक बात क्या है, मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। मैं प्रश्न बोल दिया, उत्तर मालूम है आपको उसका? उत्तर बताए महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि सब लोग एक एक करके मर रहे हैं, लेकिन जो जिंदा है उनको लगता है कि हम नहीं मरेंगे। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। सब लोगों को हम बचपन से बड़े होते हुए, फिर बाद में शादी होती है, फिर बुढ़ा होते हुए, बीमार होते हुए और मरते हुए देखते हैं, और बहुत लोगों के मैयत में हम भी जा चुके हैं, शमशान में, हाँ, लेकिन जो जीवित है वो शमशान में जाते हैं पहुंचाने के लिए, दुख तो बहुत करते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं कि मैं भी मरूंगा और एक दिन वो भी मर जाता है, और उसके मैयत में और लोग जाते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं कि मैं मरूंगा। ये सबसे बड़ी आश्चर्य बात है। ये उत्तर सुनकर वो आवाज जो थी वो बड़ी प्रसन्न हो गई, और वो आवाज ने दर्शन दिया, और वो कौन थे? यस, ये मैं आपको ऑटोमेटिक बता सकता हूं तुरंत कथा के रूप में, लेकिन बताऊंगा तो आपको याद कैसे रहेगा। कौन प्रकट हो गए? यमराज स्वयं। वो यमराज वहां पर गुप्त रूप में उनका परीक्षा ले रहे थे, वो धर्मराज के पिताजी हैं वो यमराज। फिर उनकी कृपा से सारे भाई जीवित होते हैं। ये भी काम में वन में है, उनके घर के पास में। तो इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं? किसी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। चार भाइयों ने दुर्लक्ष क्यों किया? उनके अपने बल पे इतना अहंकार था कि कौन हमें मार सकता है, किसकी हिम्मत है ऐसे मारने की। ये नहीं देख रहे हैं चलो मैं बड़ा बलवान हूं, लेकिन मेरा भाई अर्जुन यहां मुर्दा होके पड़ा हुआ है, वो भी एक चैंपियन है पूरा वर्ल्ड का, वो मरा पड़ा हुआ है, नकुल सहदेव मरा पड़ा हुआ है, फिर भी भीमदेव को लग रहा कि क्या, आई डोंट केयर, वो भी मर गया। लेकिन धर्मराज नम्र थे, इतने बड़े विद्वान थे वो, इतने संयमी, इतने धीर, इतने सद्गुणों से भरे हुए राजा थे वो, बलशाली भी थे, ऐसा नहीं कि बलशाली नहीं थे, लेकिन दिमाग बहुत शांत था उनका। क्या नाम है उनका? नाम क्या उनका? युधिष्ठिर। क्या मतलब है उसका? सोचो, जिसकी बुद्धि युद्ध जैसे भयंकर अवस्था में भी स्थिर रहती है वो युधिष्ठिर, इसलिए नाम उसका युधिष्ठिर है। एक नाम धर्मराज भी है, धर्म का प्रतीक है वो, साक्षात धर्म जो है ना, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको देखो वो क्या करता है, वो देखो आपको पता चलेगा यही धर्म है। धर्म किताब में जो लिखा है और उसके वर्ताव में आप देख रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, इतना धर्मराज था वो। तो वो कैसे है ना, वो उसको एक मराठी में कहते हैं वास्तववाद से भान, मतलब जो क्या चल रहा है ना उसके बारे में उसको बहुत नॉलेज होता है, जानकारी होती है क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, मेरे चारों भाई मरे पड़े हुए हैं, मुझे सावधान होना चाहिए, गुरमी में चलना नहीं चाहिए, मैं देख लूंगा नहीं। अपनी नम्रता के वजह से न केवल उसने उस आवाज को प्रसन्न किया लेकिन चारों भाइयों की जान भी बचाई, नहीं तो उस दिन भी गए होते वो लोग सब लोग। तो ये काम्यवन जो है इस वनवास में एक बार कृष्ण भगवान पांडवों को मिलने को आए द्वारका से, तब भगवान द्वारकाधीश राजा बनकर राज्य कर रहे हैं, तो वो मिलने को आए। और अभी देखो वनवास में अभी इतने बड़े वो महात्मा थे पांडव लोग, इतने वीर थे, इतने सद्गुण थे उनके अंदर, कभी किसी का बुरा नहीं किया, दुनिया उनको दुलारती थी, प्रेम करती थी उनके ऊपर, और उनके ऊपर वनवास का प्रसंग आया। तो वनवास का मतलब क्या होता है, रोज पनीर की सब्जी, आलू का पराठा, दाल फ्राई, वो सब मिलता है क्या उधर, केवल कंदमूल खाना है, रोज जाके नंगे पैर, पैर में चप्पल भी नहीं पहन सकते आप, झोपड़ी में रहना है आपको। ऐसा नहीं कि भाई अच्छा नदी किनारा देखा, अच्छा पेड़ देखे, अच्छी छाया देखी, अच्छी जगह देखा तो उधर रह गए 12 साल, नहीं, हर कुछ दिन के बाद बदलना है आपको। कोई भी चीज से आसक्त नहीं होना है कि भाई ये पेड़ में अच्छे फल है, इधर रहेंगे तो अच्छे रोज फल खाते रहेंगे, नो। और नंगे पैर घूमना है, फिर कभी जंगल में रोज कोई राक्षसी आ रही है, कोई राक्षस आ रहा है उसको मारना है, एक भाई जगह रह रहा है, बाकी सब लोग सो रहे हैं, तो बाद में टर्न बाय टर्न सो रहे हैं, एक जगह रह रहे हैं, पायरा दे रहा है, कितना डेंजर है उसके अंदर, कभी शेर आ रहा है, कभी सिंह आ रहा है, राक्षस आ रहा है, रोज का खेल है वो। अभी आप जंगल में रहेंगे तो आपको रोज सांप दिखेगा, तो क्या बड़ी बात है, जंगल में तो सांप दिखेंगे ही। ऐसा जीवन था उनका, बहुत कष्टमय जीवन था। राजपुत्र होने पर भी उनके पास में खाने के लिए कंदमूल, मतलब हमारा सैलड, खाली कच्चे फल खा रहे हैं, तो जिंदगी गुजार रहे हैं। कहते हैं बेचारा भीम था ना, वो 13 साल बेचारा भूखा रहा, 12 साल वो जो भी कुछ मांग के लाते थे ना, अभी गांव में भिक्षा करते थे, वो भिक्षा करते थे या तो कंदमूल खाते थे, जो भी मांग के लाते थे वो सारा जो हिस्सा है ना उसका आधा हिस्सा भीम को देते थे वो, और आधा हिस्सा सब बांट के खाते थे, फिर भी भीम भूखा ही रहा 12 साल। अभी जो आदमी का भूख ज्यादा है बहुत, उसको भूखा रहना मतलब कितना कष्ट है मालूम है आपको, इतना रोज का पीड़ा है, 3 बार का, तीनों बार की पीड़ा है, जिसको भूख लगती है वो क्या करेगा बेचारा, भोजन ही नहीं मिल रहा है। इतना सारा कष्ट देखकर कृष्ण भगवान को ना बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया उनको, और इसे क्रोध में वो बोले कि मैं अभी के अभी सारे विश्व को जला देता हूं, जलाकर राख कर दूंगा पूरे विश्व को मैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को शांत किया। अभी आप बोलेंगे भगवान भी ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते क्या? नहीं, भगवान अपने प्रेम दिखा रहे भक्त के प्रति, उनके भक्त को वो कितना चाहते हैं और भक्त का कष्ट कैसे उनको सहन नहीं होता है, इसका प्रमाण दे रहे भगवान। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको कहा कोई बात नहीं, हमारा जो नियम है 12 साल का पूरा करना है। तो उस समय भगवान कृष्ण जब शांत हुए तो उन्होंने द्रौपदी को और पांडवों को कार्तिक महीने का व्रत समझाया। आप सोचते हैं कि मैं कहानी क्यों बता रहा हूं, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। तो उस समय भगवान ने कहा कि आपके जो कष्ट है, जो भी आपकी पीड़ा हो रही है आपको, जो भी आपका दुर्भाग्य है जिसकी वजह से आप जंगल में भटक रहे हो, वो सब मिट जाएगा आपका। अभी आने वाले कार्तिक महीने में आप कार्तिक का व्रत करो, आपके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, सारा वैभव अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आने वाले कार्तिक में द्रौपदी जी ने और पांडवों ने कार्तिक का व्रत किया, और उसके बाद में महाभारत का युद्ध हुआ और वो विजयी हो गए और सारा साम्राज्य उनको प्राप्त हो गया। तो ये कार्तिक का व्रत क्या है, अभी आपको क्या लगता है, केवल पांडव लोग तकलीफ में थे, उनको ही कष्ट हो रहा था, उनको ही दुख हो रहा था, आप लोगों को दुख नहीं है, आप लोगों को कष्ट नहीं है क्या? या हम फोन करेंगे आपको हाउ आर यू तो बोलेंगे हाँ फाइन वेरी फाइन, किधर हो अभी? अब मैं मनाली में हूँ, छुट्टी मना रहा हूँ। लेकिन वो केवल कहने की बातें हैं, फोन पे हाउ आर यू को फाइन बोलने का मतलब ऐसा ही रिवाज है बोलने का, क्या बोलेंगे अभी, मेरी पत्नी मुझे गाली दे रही रोज, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं है, बताएंगे आप फोन पे? नहीं बोल सकते। मराठी में और एक शब्द है मालूम है, अवघड़ जागेचं दुखणं। वो बोलते हैं कि सहन नहीं होत नहीं और सांगता ही येत नहीं, ऐसे जगह दर्द है कि आप बोल सकते नहीं, आपको केवल डॉक्टर को बोल सकते लेकिन बाकी लोगों को बोल नहीं सकते कि मेरे कहाँ दर्द हो रहा है और कहाँ फोड़ा आ गया है और क्या बताऊँ आपको। दुनिया की बहुत सारी तकलीफ है ना, वो वैसे अवगढ़ जागेचं दुखणं, जो बोल नहीं सकते किसी को, वो केवल खुद ही सहना पड़ता है। कभी कभी दुख ऐसे होते कि पति को भी नहीं बोल सकते और पत्नी को भी नहीं बोल सकते और किसी को नहीं बोल सकते, ऐसा दर्द होते, कुछ अपने आप सहने पड़ते हैं, कहने लायक होते ही नहीं वो। और एक शब्द है मराठी में, तोंड दाबून मुक्याचा मार, मालूम है आपको, सुना है कभी आपने? अधिकतर हम लोगों को सबको मुंह बंद करके मुक्के का मार मिलते रहता है और हम लोग कुछ नहीं बोल सकते उसके लिए, असहाय हो जाते हैं उसके लिए। खास करके जब हमारे बच्चे हमको कष्ट देते हैं तो हम किसी को नहीं बोल सकते, ना भाई को ना बहन को बोल सकते कि बच्चे हमको इतना परेशान कर रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे हैं, बर्बादी की ओर जा रहे हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, फिर भी हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, हमें बहुत तकलीफ होती है उसको। तो ये जीवन जो है, आप समझो या ना समझो, मानो या ना मानो, लेकिन सबके जीवन में यहां पर कष्ट है। तो क्या ऐसा था क्या केवल पांडव लोग वनवास में थे इसलिए उनको ये व्रत करने की जरूरत थी? हम तो अपने घर पे रहते हैं, कोई जेल में भी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं भोग रहे हैं, अपने आप आराम से जी रहे हैं, तो हमको क्या जरूरत है व्रत करने की? लेकिन हम सब लोग इस दुनिया के जेल में बंद है, हमको लगता है हम फ्री है लेकिन इसमें से कोई फ्री नहीं है, सब काल के प्रभाव में है, कर्म फल के बंधन में है, सब लोग बांध के रखा हुआ है। किसी को लगता है हम फ्री है लेकिन सब लोग बंधे हुए हैं, ऐसा प्रकार का जेल है ये। ना कोई साखड़ी बांधी है आपको, ना कोई दोरी बांध के रखी हुई है, कुछ नहीं किया है, आप फ्री हो फिर भी आप सब लोग बंधे हो, ऐसा अद्भुत जेल है ये। और इसमें क्या दुख होता है? जन्म का दुख होता है, मृत्यु का दुख होता है, बुढ़ापे का दुख है, बीमारी का दुख है, बच्चे से दुख है, पिताजी से दुख है, माता से दुख है, पड़ोसी से तकलीफ है, आकाश में धूप है, कभी कभी आंधी है, कभी तूफान है, कभी वर्षा हो रही है, हम लोग टाल सकते हैं क्या उसको? प्रधानमंत्री होगा तो क्या होगा, जब तूफान आता तो क्या करता है वो? कुछ नहीं कर सकता है, तूफान समेगा तो फिर राहत कार्य शुरू कर देगा वो। कितना ही बड़ा टेक्नोलॉजी का देश होगा अमेरिका में, जब कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगती है तो क्या करता है प्रेसिडेंट? कुछ नहीं कर सकता है, जब बुझेगी तो नुकसान कितना हो गया उसका निवारण करता है वो, लेकिन नुकसान रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता है वो। कोई भी समर्थ नहीं है दुनिया में प्रकृति के सामने खड़ा होने के लिए कि मैं हवा को रोक दूंगा, तूफान को रोक दूंगा, बम्बई में आने दूंगा नहीं। ये सब हम लोग खाली ताली बजाएंगे, वाह क्या डायलॉग मारा है। हाँ, वो कैसे बोलते हैं बॉयफ्रेंड कि तुम चाहो तो चांद को तोड़ के लेके आऊंगा, तो बोलेंगे पहले वो आम तोड़ के लेके आओ, बाद में चांद के बारे में देखेंगे आगे की बात। तो वो डायलॉग है एक ऐसा बताने के लिए कि तुम्हारे लिए तारे भी तोड़ के लेके आऊंगा, तो वो सब ऐसे ही कहने की बात है। वैसे कभी बोलता है ना, मैं क्या तुम्हारे लिए आग 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 को थमा लूं, क्या हवा को रोक लूं, क्या करूं तुम्हारे लिए मैं, बताओ, जान हथेले पे हाजिर है, ये सब बोलने की बात है। वास्तव में ये सब कविताएं ना चलती है जिंदगी में। तो कार्तिक का व्रत करने से, अभी बहुत लोगों को श्रद्धा नहीं होगी मैं जो बताने जा रहा हूं, बोले क्या बकवास की बातें करते, ये करने से ऐसे होगा, वो करने से ऐसे होगा, लेकिन जो श्रद्धा से करता है अगर उसको उसका लाभ मिल गया तो आपका तो ट्रेन छूट गया, आपने विश्वास नहीं किया, ट्रेन पे लोड नहीं हो गया, आप जो बैठ गए वो पहुंच गए। रूपा जी हमेशा कहते थे, हाँ जो हम लोग सब कह रहे हैं समझो मानो झूठ है, भगवान भी नहीं है, भगवान का धाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ बकवास है हम जो बोल रहे हैं वो, लेकिन फिर भी आज हम लोग बड़े मजे की जिंदगी जी रहे हैं, प्रसाद खाते हैं, फर्स्ट क्लास भक्तों से संग करते हैं, स्टोरी बोलते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, चार नियम का पालन करते हैं, अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है, अच्छी जगह हम घूमते जाते हैं, अच्छा अच्छा प्रसाद पाते हैं, तो ये जिंदगी हमारी बहुत आनंद में जा रही है। और अगर समझो मैं हम जो कह रहे हैं वो सच है तो इस जिंदगी के एंड में हम लोग भगवान के धाम में जाएंगे, तो दोनों तरफ से हम लोग फायदे में हैं। अगर हम लोग जो मानते हैं वो झूठ भी है तो भी हमारी जिंदगी आनंद में है, और हम जो मानते हैं वो सच है तो हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, और आपकी जिंदगी दोनों तरफ घाटे में है क्योंकि आप अभी भी पाप कर रहे हो और दुखी दुखी हो, और एंड में तो आपको वही मिलना है जो आपको मिलना है। तो उस तरह से कार्तिक का व्रत का भी ऐसा ही है, आप मानो और पालन करोगे तो लाभ है, नहीं तो अगर दीपक दिखा रहे हैं और गीत गा रहे हैं तो आनंद ही आनंद है ना, क्या नुकसान है उसके अंदर। भगवान की भक्ति ऐसी होती है कि वो करने से कभी भी किसी का नुकसान भी कभी भी नहीं होगा। आपको लगेगा फायदा नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है, लेकिन नुकसान तो नहीं हो रहा है कुछ। आपको अगर फ्री में कोई लैंप हाथ में दे दिया बना के घी का और आपने 4 बार भगवान की ओर घुमाया, क्या नुकसान हो गया आपका। लेकिन अगर जो बताने वाले हैं वो फायदा अगर होता है तो आप तो लाभ ही लाभ में हो, बहुत बेनिफिट में हो। और कार्तिक व्रत ही क्यों, चैत्र व्रत क्यों नहीं, फाल्गुन का व्रत क्यों नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि चतुर्मास से जो है ना 4 महीने का, वो भगवान ने उसको ज्यादा पावर दिया हुआ है। और ये चतुर्मास के 4 महीने में आखिरी महीना जो है दामोदर मंथ बोलते हैं उसको, उसको सबसे ज्यादा पावर दिया भगवान ने। और वो कहते हैं कि महीना तो भगवान के नाम पे है वो दामोदर, लेकिन लाभ देने वाली राधा रानी है उस महीने में। बाकी केशव मास माधव मास बहुत नाम है भगवान के, ऐसे वैष्णव कैलेंडर के अंदर महीनों के अलग नाम है, केशव माधव गोविंद ऐसे नाम है। इस महीने का नाम दामोदर है, लेकिन हर महीने में वो भगवान जिनके नाम पे वो महीना है वो भगवान ही उसको फल देते हैं। लेकिन कार्तिक महीना एक ऐसा महीना है जो दामोदर नाम होने पर भी राधा रानी उसको लाभ देती है। और जब वो लाभ देती है कैसे देती है, समझो आपने एक माला किया जनवरी महीने में तो आपको एक लाभ मिला, लेकिन वही माला आपने कार्तिक महीने में किया तो उसको 1,00,000 गुना आपको लाभ मिलेगा। इस टाइप का लाभ मिलता है उसमें, मतलब क्या हो गया, ग्रेट ग्रैंड सेल होता है ना दिवाली में, ऐसे सेल लगे ना वो, आप एक माला करोगे तो आपको 1,00,000 माला करने का लाभ मिलेगा, वो खाली ये महीने में। उसी को कार्तिक व्रत कहते हैं। व्रत का मतलब क्या है, व्रत मतलब जो नियमित रूप से करना पड़ता है उसको, आप ऐसा आज आया मूड तो कर लिया, कल आया तो मूड नहीं किया, जैसे बच्चा हो गया समझा आपको, तो आज मूड है तो दूध पिला दिया उसको, कल मूड है तो सुला दिया उसको, परसों अच्छा मूड आ गया तो आपस खाना खिला दिया उसको, ऐसे नहीं होता ना। आपको नींद आ रही है तो भाई नहीं नहीं मैं तो रात को बच्चे को कुछ नहीं करूंगी, सुबह उठने के बाद देखूंगी, कुछ भी होने दो उसको। कुछ काम ऐसे होते हैं वो आपके पसंद पे नहीं रहते, आप बीमार हो अच्छे हो मूड में अच्छा है नहीं अच्छा मूड हो, आपको वो करना ही है, किसी भी तरह से करना है। बच्चों को पालना मतलब पालना ही है आपको, उस तरह से व्रत का मतलब है सातत्य, यानी वो आपको 30 दिन करना ही है। और व्रत में एक चीज ऐसी होती है इंक्लूड होती है उसके अंदर, वो क्या है कि वो उसमें थोड़ा बहुत कष्ट होना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत कष्ट नहीं होगा ना, जैसे कि अभी डिलीवरी में माता को अगर पीड़ा नहीं हुई तो कहते हैं कि इतना प्रेम नहीं होता है, लेकिन जब माता प्रसूति का दर्द अनुभव करती है तो बच्चे पर उसका बहुत आसक्ति निर्माण हो जाता है। क्या सोचते माता, इतना कष्ट से मैंने उसको जन्म दिया है ना। कोई चीज फ्री में मिल गई तो आपको इतना वैल्यू होता नहीं, लेकिन उसे पसीना बहा के कमाई है तो बहुत उसमें आपको आसक्ति होती है। तो उस तरह से थोड़ा बहुत दर्द उसमें होना चाहिए, थोड़ा आपको कष्ट होना चाहिए, ऐसा आसानी से कोच में बैठकर ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत उसमें आपको कष्ट होना चाहिए। और वो ऐसे कहा गया है कि व्रत जब लेते हैं तो ऐसा भी नहीं कि बहुत कठोर होना चाहिए, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं अभी रोज 64 माला एक्स्ट्रा करूंगा कार्तिक महीने में, अरे बाप रे 8 घंटा एक्स्ट्रा जब करना, मतलब 8 घंटा का 12 घंटा तो काम करते हैं हम लोग यहाँ पर रोज, दिन होते 24 घंटे का, 6 घंटा सोते हैं तो 8 घंटा एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे, तो होगा ही नहीं। और रोज सर पिट पिटते रहेंगे, क्यों ऐसा व्रत लिया, क्यों ऐसा व्रत लिया, कैसे करूंगा कैसे करूंगा। जैसे एक बार मैंने ऐसा व्रत लिया था, सब लोग ले रहे थे, मैंने भी लिया कि एक ही बार अन्न खाएंगे बाकी दोनों फार फल खाएंगे। वो तो मुझे जवान व्यक्ति थे हम, इतना हालत खराब हो गया ना, 4 दिन में छोड़ दिया उसको। अभी आज कर सकते हैं ये उम्र में, उस उम्र में करना बहुत मुश्किल था, इतना जठर की अग्नि इतनी प्रभावी थी, पावरफुल थी उस समय, कि एक ही बार अन्न और 2 बार फल तो इम्पॉसिबल था। तो इसलिए कहा गया कि इतना कठोर व्रत लेना नहीं चाहिए, व्रत लेना है तो लीजिए, लेकिन वो पालन करने में भी आसान होना चाहिए और थोड़ा बहुत कष्ट होना चाहिए उसके अंदर। तो ऐसा कार्तिक व्रत आपको मैं उदाहरण दूंगा, क्या आप ले सकते हैं, जब आप लोगे ना तो इसी जीवन के अंत में आपको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा उसका वरदान है। 50 साल 60 साल 70 साल या 80 साल के जिंदगी में अगर एक साल में भी आपने एक एक बार कार्तिक का व्रत किया होगा ना ठीक ढंग से, तो भी आपको इस जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त होगा। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं उसका एजेंट नहीं हूं, देने वाले तो वो है जिसको भेजना है आपको अंदर, उनकी मर्जी है, वो खुद बोल रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा लाभ होगा आपको। इसलिए कार्तिक मास का व्रत, हर एक व्यक्ति जो अपने आप को मनुष्य मानता है उसको कार्तिक महीने का व्रत पालन करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य ही नहीं है जो कार्तिक का व्रत पालन नहीं करते हैं। अभी आप तय करो आप कौन हो और को क्या करना है, भगवान ने व्याख्या कर दिया है। क्योंकि ऐसा कौन सा जानवर है, पंछी है, मछली है, पेड़ है या कीटक है जो कार्तिक का व्रत करता है, बताओ कोई भी ऐसा जीव है? ये सारे व्रत जो है, ये सारे नियम जो है, ये शास्त्र है, ये उपदेश है, ये भगवान के नाम का जप है, ये तीर्थ यात्रा है, एकादशी का उपवास है, ये किसके लिए है? केवल मनुष्यों के लिए है, बाकी कोई भी जीव इसको पालन नहीं कर सकता है। तो कार्तिक का व्रत भी मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए नहीं है। जानवर कोई व्रत नहीं कर सकता है, आहार निद्रा भय मैथुन, बस इतना ही करना है उसको। तो कार्तिक का व्रत जो पालन करता है, कहते हैं उसके शरीर में सारे देवताएं निवास करते हैं, देवता उसका संग चाहते हैं कार्तिक व्रती का। इसलिए कार्तिक महीने में व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर में ही देवता निवास करते हैं, तो उसका संग बहुत कीमती हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ संग करना जो कार्तिक का व्रत कर रहा है। क्योंकि आपको केवल उसका संग नहीं मिल रहा है, आपको सारे देवताओं का भी संग मिल रहा है उसके साथ में। जरूरी नहीं कि आपको ब्राह्मणी होना चाहिए या आपको आपको चमारी होना चाहिए, शूद्र होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए बस। केवल मनुष्य होकर आपने व्रत किया तो जात पात का भेद न होते हुए आपके शरीर में देवता निवास करेंगे। क्योंकि देवता लोग आपको जाति के अनुसार देखते नहीं, वो आपको गुण के और आपके कर्म के अनुसार देखते हैं कि क्या कर रहे हो आप, क्या गुण है आपके अंदर, उसके अंदर आपकी वैल्यू होती है ना। अभी नारद मुनि जैसे व्यक्ति थे ना, दासी के पुत्र थे वो, मतलब शूद्र थे वो, लेकिन दासी का पुत्र होने के नाते उन्होंने साधुओं की सेवा की, तो अगले जन्म में वो दासी का पुत्र नारद मुनि बना। किधर से कहां पहुंच गया, साधुओं के संघ की वजह से। ये कहानी स्वयं नारद मुनि सुना रहे हैं अपने शिष्य को कि मैं एक दासी का पुत्र था, कोई वैल्यू नहीं थी मुझे, मेरी मां भी विधवा थी और वो मर गई एक दिन, लेकिन मेरी दासी का माताजी का पुत्र होने के नाते जब मैंने माताजी को हेल्प किया साधुओं का सेवा करने के लिए, उसकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हो गए और आज मैं नारद मुनि के रूप में सब जगह विचरण कर रहा हूं। तो भगवान के संग का और साधुओं के संग का महात्म्य बता रहे नारद मुनि अपने शिष्य को, व्यासदेव को। और बाद में कहते हैं अभी तुम लिखो भगवान की कथा, तुमने वही ले लिखा है, बाकी सब कुछ लिखा है, अब पूरा करो उसको। तब उसके बाद में नारद मुनि ने कहने के बाद में व्यास मुनि ने श्रीमद् भागवत लिखा, और उसके बाद में कुछ नहीं लिखा, कोई जरूरत नहीं पड़ी लिखने की, सब पूर्ण हो गया, वेद पूर्ण हो गए। तो तात्पर्य यह है कि कार्तिक का व्रत करने से आपके शरीर में देवता निवास करेंगे। जैसे कोई सुगंधी व्यक्ति, समझो कोई बहुत अच्छा फूल का शुद्ध अत्तर लगा के आपके पास बात कर रहा है, तो आप सब बात तो कर रहे हो, आप सुन रहे हो, आप भी कर रहे हो बात, लेकिन बात करते करते खुशबू आती रहती ना कि नहीं आती रहती? या कोई आपके साथ में बात कर रहा है, उसके शरीर में बहुत पसीने का बदबू आ रहा है, आपसे बात कर रहा है वो, लेकिन साथ में पसीने की बदबू भी आती रहती ना कि नहीं आती रहती? उसी तरह से जब आपके शरीर में देवता निवास करेंगे तो आपको भी अद्भुत अनुभव होंगे जब आपके अंदर वो निवास कर रहे हैं। इसलिए कार्तिक का व्रत कीजिए, उसको कल से कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, अश्विन पूर्णिमा, ये इतना पवित्र महीना है, इसलिए राधा रानी स्वयं चुनती है कि मैं आके लाभ दूंगी सब लोगों को, आई वॉन्ट टू गिव, ऐसा स्पेशल पीरियड है, इसमें जो भी कोई करेगा मैं खुद उसको फल दूंगी उसका। और आप लोग जानते हो राधा रानी कौन है, कृष्ण भी उसके नियंत्रण में है, सबसे बड़ी स्वामिनी है वो। कृष्ण होंगे सब दुनिया के निर्माणकर्ता, कंट्रोलर, स्वामी, ईश्वर श्री कृष्ण है, लेकिन उनको भी नियंत्रण करने वाली कोई है जो अपने आप को आगे नहीं करती कभी, लेकिन प्रेम से उनको नियंत्रण करती, कठोरता से नहीं करती। कृष्ण स्वयं अपनी इच्छा से उसके नियंत्रण में रहते हैं, वैसे राधा रानी हो। और वो राधा रानी जब कुछ भी चाहती है तो भगवान उसको कभी ना नहीं कर सकते, अगर भगवान भी किसी को अगर वरदान देना नहीं चाहते और राधा रानी देना चाहती है तो भगवान को देना पड़ता है वरदान उसको। आपको मालूम है स्टोरी क्या है उसकी? भगवान ने अश्वत्थामा को शाप दिया था, कितना किसी को याद है? किसको याद है क्या शाप दिया था अश्वत्थामा को? यस, कोई बोल सकता है? आज की तारीख में, आज तक के तारीख में, सृष्टि के निर्माण से ऐसा भयंकर शाप किसी को नहीं मिला है, ना भगवान ने किसको दिया है। भगवान के मुख से तो कभी निकला ही नहीं, लेकिन अश्वत्थामा को दिया गया वो शाप। किसी को पता है क्या? एक तो कम से कम बोलो। उन्होंने पहले तो उसका मणि निकाल दिया, पहले जो मणि उसकी शोभा का लक्षण था, चिन्ह था, जिसके वजह से अश्वत्थामा बहुत शक्ति प्राप्त करता था, वो मणि उखाड़ लिया भगवान ने पहले उसके सर से। वो जख्म बहने लगा, अनंत दर्द हो गया उसको, तो भगवान ने पहले उसको मणिहीन कर दिया, नंबर वन। नंबर टू कहा कि ये जो खून बह रहा है ना, इसको कितना ही मलम पट्टी करो आप, कितना भी दवाई लो, ये खून नहीं रुकने वाला है आपका, कभी नहीं रुकेगा, और इसमें इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि आप बोलेंगे मरना पसंद है मुझे, लेकिन दर्द नहीं चाहिए, इतना दर्द होगा, लेकिन आपका दर्द कम नहीं होगा। और चौथा बताया कि मरने चाहने पर भी आप मरोगे नहीं, अमर ही रहोगे, तड़पते ही रहोगे और मरोगे भी नहीं। मतलब क्या रखा गया उसके लिए बाकी, क्या करेगा बेचारा वो? और जब टॉप सबसे व्यक्ति ने, सुप्रीम कोर्ट ने आपको अगर पनिशमेंट दे दिया है, कौन बचाएगा आपको? तो भटकता रहा वो, इतना दर्द का अनुभव किया उसने, जख्म बह रहा है कॉन्स्टेंटली, दर्द हो रहा है, कोई उपाय नहीं। ब्रह्मा के पास गया, शिवजी के पास गया, कुछ नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा ने बताया, अभी देखो तुम्हारे लिए मेरे तो हिसाब में कोई चांस नहीं है, लेकिन आप एक चांस ले सकते हो, आप राधा रानी के धाम में चले जाओ बरसाना, और वहां जाके उसको पुकारो, कहीं स्वामिनी का दिल आपके ऊपर आ गया तो आप शायद बच सकते हो, गारंटी नहीं मेरे पास, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। तो वो अश्वत्थामा बरसाना चला गया और वहां पर उसने राधा रानी का भजन किया। राजा रानी का भजन करते ही वो प्रसन्न हो गई और राजा रानी का आशीर्वाद से तुरंत उसका जख्म सूख गया, दर्द समाप्त हो गया और वो महान संत बन गया। ये किसी को मालूम नहीं है स्टोरी, आज भी वो जगह बरसाने में है जहां पर इतना बड़ा पापी अश्वत्थामा संत अश्वत्थामा बन के अभी भी निवास कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो अमरता का वरदान है ही, मरेगा नहीं वो, लेकिन अभी उसको दर्द वर्द नहीं हो रहा है, जख्म नहीं बह रहा है उसका, जख्म भर गया उसका। राधा रानी ने उसको आशीर्वाद दिया कि अभी तुम इसी वन में रहो और मेरे वन की रक्षा भी करो। आज भी वो उस वन में जो तपस्या करते लोग, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, खुद संत हैं, उसको उनको अश्वत्थामा दर्शन देते हैं उस वन में, उसका नाम है पिपासा वन। तो ये मैंने क्यों बताया आपको कि कृष्ण भगवान नहीं भी चाहते हो और राधा रानी चाहते हैं तो कृष्ण भगवान की इच्छा के खिलाफ भी उसको वरदान मिलता है। कृष्ण भगवान ने तो जिंदगी भर तड़पने का शाप दिया था उसको, लेकिन राधा रानी ने उसको अपने अधिकार में कैंसिल कर दिया। वो राधा रानी है, आप समझो उसका महत्व क्या है, और वो चाहती है कि मैं फल दूं। अगर कृष्ण भगवान की दृष्टि से आपकी तपस्या, आपका व्रत फल देने योग्य भी नहीं होगा, तो भी राधा रानी का इच्छा से आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि आप कार्तिक में व्रत कर रहे हो। वो चाहती है कि कार्तिक में कोई भी तुच्छ व्रत भी करेगा तो मैं उसको लाभ दूंगी। और ये कार्तिक महीने में एक और चीज है, वो है दीपदान। इसमें घी का दीपक एक बार जो विष्णु भगवान को या विष्णु के किसी अवतार को या कृष्ण भगवान को अगर दीप दिखाता है तो कहते हैं करोड़ों करोड़ों युगों के, अनंत जन्मों के आपने जितने पाप इकट्ठा किए हैं वो सब एक दीपक के प्रकाश में नष्ट हो जाते हैं। एक दीपक के प्रकाश के सामने कार्तिक महीने में कोई भी अनंत जन्मों का पाप टिक नहीं सकता है। बहुत बड़ा महात्म्य है उसका दीप का, लेकिन इतना समझना काफी है कि हमने कितने भी पाप किए होंगे, लेकिन अगर आप याद से कार्तिक महीने में विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को अगर दीपक दिखाते हो तो आप बड़ा ही कल्याण कर रहे हो खुद का। यहां तक कि अगर किसी दूसरे को दीपक जला के दोगे ना, उसका भी लाभ है आपको। इसलिए मंदिर में बहुत लोग दीपक देने में खड़े रहते हैं, खुद दीपक तो देते हैं भगवान को, लेकिन सबका दीपक जला के उनके हाथ में देते हैं और एंड में खुद का दीपक जलाते हैं भगवान को। किसी का दीपक बुझ गया और आपने उसको दोबारा जला दिया अपने दीपक से, तो भी उसका एक लाभ है, उसमें लाभ ही लाभ है, आप कुछ भी करो उसमें। बहुत लोग क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं कार्तिक महीने, मालूम है आपको? पतंग उड़ाते, ढबू पतंग लेते बड़ी भारी वाली, जो आकाश में स्थिर रहती है, ऐसी खड़ी रहती है। तो आगे गई तो कंदिल लगाते हैं, उसमें दीपक जलाते हैं और छोड़ देते हैं उसको। फिर थोड़ा आगे गया, दूसरा कंदिल लगाते हैं, उसमें दीपक जलाते हैं, एक्चुअल बल्ब नहीं लगाते, एक्चुअल दीपक लगाते हैं और आकाश में दीपक की मालिका बनाते हैं। उसका भी लाभ है कार्तिक महीने में। और आपने इस कार्तिक में जितने भी दीपक लगाए होंगे, समझो 30 लगाए होंगे या 60 लगाए होंगे या दिन में 3 बार लगाए होंगे, तो वो दीपक का, गोपीकांत जी गुड मॉर्निंग, जब कार्तिक का महात्म्य सुनाई पड़ रहा है तो आपको नींद आ रही है, तो फिर क्या करेंगे, क्या लाभ मिलेगा? इसलिए कथा सुनते समय कभी भी टेक के नहीं बैठना चाहिए। जो टेक गया वो सो गया, हरे कृष्णा। और कथा के अंदर यदि कथा होती है भगवान की, तो नारद मुनि, व्यास मुनि, अगस्त्य मुनि, सब प्रकार के मुनि, व्यास देव, सुखदेव, हनुमान जी सब आकर बैठते हैं उसको, नहीं हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन जहां पर भी भगवान की कथा होती है, कोई भी करता होगा, अगर भगवान के विषय में बोलता होगा, तो वहां पर वो सब हाजिर हो जाते हैं। इसलिए कथा कथाकार के सामने बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का फिर जो अदृश्य है उनका भी संग प्राप्त होता है। तो ये 30, 40, 50 जितने भी आप, हमारा कैसा है, अभी सुबह यहां पर कर दिया, कल सुबह जागृति में आके दीपक दान कर दिया, फिर शाम को काउंसलिंग मीटिंग है उधर भी कर दिया, फिर घर में पूजा हो रही उधर भी कर दिया, फिर मंदिर में जाकर उधर भी कर दिया, कितने 4 तो हो गए दिन में, ऐसे 3-4 तो होते रहते इधर, कोई भक्ति विधान में दोपहर को गए तो उधर भी कर दिया, वो बोले सब प्रभु जी 5 मिनट का, 5 बजे की आरती हो रही है आप आ जाओ, तो 5 बजे भी कर दिया उधर, फिर पीवी दशमी प्रार्थना में गए तो उधर भी कर दिया, सब जगह हाथ में दीपक मिल रहा है तो क्यों नहीं करेंगे? कुछ अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, माचिस किधर है, दीपक किधर है, बाती किधर है, ऐसा नहीं है, रेडीमेड बोला प्रभु जी लो तुरंत घुमाना है उसको। तो ऐसे तो 30 नहीं 150 भी हो सकते हैं। वो सारे दीपक का जितना एकत्र प्रकाश होगा ना, अभी आपके पास एकत्र तो नहीं है, आपने हर एक दिन एक एक किया ना, लेकिन अगर 40 दीपक आपके एकत्र रखे और जितना प्रकाश हो गया ना, वो प्रकाश आपको मरने के बाद में भगवान के रास्ते पर रोशनी देगा। कुछ समझ में आया? अभी तो आप ऐसे ही घुमा रहे हो, लेकिन भगवान वो सारा प्रकाश याद रखते हैं और वही सारा प्रकाश आपके मरने के बाद में भगवान के धाम के रास्ते पर उसका लाइट भगवान देते हैं उसको। बाकी लोगों को अंधकार में घसीटते हुए जाना पड़ता है, यमराज के पास में बंद कर पीटते पीटते जाना पड़ता है, और हम लोगों को और आप लोगों को दीपक दान करने के बाद में वो दीपक के प्रकाश में बड़े ही प्रेम से ले जाते हैं भगवान के धाम में। बहुत फर्क है उसके अंदर, किसी को बांध के घसीट के ले जा रहे हैं, किसी को प्रेम से हवा देते जा रहे हैं, फर्क है कि नहीं उसके अंदर? जा तो रहे सब लोग, लेकिन कोई कष्ट में है, कोई आनंद में है, ऐसे अनंत लाभ है कार्तिक में, तो आप लोग चुकना मत। और क्या क्या व्रत लेने चाहिए उसके बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप जप कर रहे हो भगवान के नाम का, समझो 4 माला कर रहे हो, तो आपको कहना है कि मैं 5 माला करूंगा या करूंगी, एक एक्स्ट्रा करना है आपको, 4 आपका नियम है और 1 कार्तिक के लिए आप कर रहे हो। हम लोग 16 माला करते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग 2 माला एक्स्ट्रा करेंगे या 4 माला एक्स्ट्रा करेंगे, या ऐसे बोलेंगे कि हर रोज 4 एक्स्ट्रा करेंगे और एकादशी में 25 माला करेंगे, या कुछ लोग एकादशी में बोलते 64 माला करेंगे, वो दिन भर बैठेंगे 4 बजे उठ के 12 बजे तक 64 राउंड पूरा करेंगे। बहुत लोग हैं यहाँ पर ऐसे, आपको जानते नहीं है, ऐसे भी लोग हैं हमारे अंदर जो साल में एक बार 192 माला जप करते हैं, कम से कम 20 घंटा, हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के दिन सुबह बैठते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर वापस 8 घंटा, फिर वापस खाना खाते हैं, फिर 8 घंटा ऐसे जप करते हैं दिन भर, प्रैक्टिस कर करके कितना उन्होंने अभ्यास किया उसका। खैर हम लोग तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन 4 का 5 तो कर सकते हैं ना, 16 के 18 तो कर सकते हैं। अभी कितने लोग ट्रेन में सफर करते हैं, कितने लोग यहाँ से अभी उधर जा रहे हैं घूमने के लिए, ट्रेन में क्या करना है, खाली बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं वीडियो पे, मोबाइल पे, जब करते बैठेंगे तो कितना लाभ है। तो इस धाम, इस महीने में कुछ चीजें हैं जो आपको कर सकते हैं आप, जैसे कि आप भगवद गीता का 1 श्लोक रोज पढ़ सकते हैं 5 मिनट, श्रीमद भागवत का 1 श्लोक पढ़ सकते हैं 5 मिनट, तुलसी को जल दे सकते हैं, चलो रोज भूल जाते हैं, इस दिन 30 दिन के लिए मैं रोज तुलसी का जल दूंगा, दे सकते हैं कि नहीं सकते, याद रखना खाली बस, सिंपल व्रत है, कुछ कड़ा काम नहीं उसके अंदर, लेकिन आपने बोला कि मैं ये करूंगा तो वो व्रत में आ गया, वो व्रत के अकाउंट में आ गया। एक दीपक कम से कम भगवान को रोज लगाऊंगा ही लगाऊंगा, व्रत हो गया आपका। रोज कार्तिक महीने में मंदिर में जाऊंगा और दर्शन करके आऊंगा, कुछ करना नहीं, जाके दर्शन करके मत्था टेक के घर पे आने लौट के। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में जाएंगे तो 3 प्रदक्षिणा करके आएंगे मंदिर को, भगवान के लिए हमेशा वो जगह होती है परिक्रमा करने की, रोज जाके 3 परिक्रमा करके आऊंगा। इतने सिंपल सिंपल से व्रत भी आप करेंगे ना तो भी आपका व्रत के अकाउंट में उसकी गिनती हो जाएगी, इतना पावरफुल मंत्र है। भगवान ने कहीं भी बताया नहीं कि आपको यही व्रत करना है और यही बोले करेंगे तो वही मेरे अकाउंट में आ जाएगा, वो ऐसा नहीं बोला है। बोले करो आप, लेकिन जो भी करो प्रेम से करो, रोते रोते मत करो, बाप रे अभी क्या एक माला बोला है मैंने गलती से, पता नहीं कब बोला, प्रभु जी ने बोला वो मंगलवार को, तब मैं फंस गया उसके अंदर, कितना तकलीफ हो रही है मुझे, ऐसा नहीं। प्रेम से करो जो करना है, दिल से करो, भक्ति भाव से करो। इतना सा भी करेंगे ना तो भगवान आतुर है उसको फल देने के लिए। जैसे आपका बच्चा है समझो, अभी आपको अपने उसको पॉकेट मनी दिया, सब कुछ आपने ही किया है, और आपके बर्थडे पे उसने 5 रुपए का एक 5-स्टार चॉकलेट ला के दिया आपको, बोले हैप्पी बर्थडे मम्मी, तो आप खुश होते हो कि नाराज हो जाते हो? अरे बच्चे ने इतना सा भी आपको प्रेम दिखाया तो भी आपको इतना खुशी है उसके अंदर कि मेरे बच्चे ने, अरे यार मेरे याद रख के पैसा दिया था उतना, तो जमा जमा करके याद रख के हैप्पी बर्थडे मम्मी करके पप्पी देने को मेरे को आया बर्थडे को, कितना सा काम किया, इतना सा काम किया, लेकिन जिसके लिए किया वो इतना प्रेमी व्यक्ति है, इतना माँ जैसा प्रेम करते हैं वो, इतना सा करने पर भी कितने खुश हो जाते हैं। अभी उसी बच्चे ने आपको ला के दिया आपको इतना खुशी नहीं होगा, लेकिन वो अपने बच्चे ने आपको दिया तो आपको 50 चुम्मा लेंगे आप एक चुम्मा के बदले में उसका, प्रेम से, वो भी दिल से एकदम आलिंगन देंगे बालक को, आपने इतना प्रेम से भर देंगे उसको, आप आंसू बहाएंगे उसके ऊपर प्रेम के। वैसे ही भगवान है हमारे, थोड़ा सा भी करोगे ना आप प्रेम से तो आपके ऊपर तो वर्षाव करेंगे प्रेम का वो, इसलिए आप चुको मत इसमें, और नहीं करेंगे तो नुकसान भी आपका है और करेंगे तो लाभ भी आपका है, क्योंकि हम तो कहने वाले हैं, हम तो करने वाले हैं निश्चित रूप से, आपको करना चाहिए इसलिए बता रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ना नहीं। और भक्ति विधान में रहने का कितना भाग्य है देखो, हाँ कौन सा ऐसा जगह है, कंपनी है, कौन सा काम की जगह ऐसी है, कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा जॉब ऐसा है बताओ जिसमें आपको नौकरी के अंदर बैठ के बताया जा रहा है कार्तिक का व्रत करो, कार्तिक का व्रत करो, क्या लेना देना है पेशेंट के ट्रीटमेंट के साथ? पेशेंट के ट्रीटमेंट में आपको जॉब दिया है, काम करो, पकड़ लो, जाओ घर पे, कार्तिक का व्रत करो नहीं आपकी मर्जी है, हमारा क्या कनेक्शन है उसके साथ? लेकिन हॉस्पिटल ऐसा है सब जगह बोर्ड लगाया है, ये करो तो ये मिलेगा, वही करो तो ये महीने में ये लेगा, ये तारीख ये है, यहाँ से यहाँ शुरू हो रही, यहाँ अंत हो जाएगा उसका, इतने में आपको ये करना है, रोज 2:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट के बाद में मंदिर में दीपक दान का व्यवस्था है, फिर जनरल शिफ्ट के एंड में 5 बजे जगन्नाथ के मंदिर में दीप दान करने की व्यवस्था है। कुछ नहीं करना है आपको, ना 2 रुपये देना है ना 0.5 रुपये देना है, रेडीमेड घी में भिगा हुआ। और हमारा एक नियम है, हम लोग झूठ मूठ का घी में लगाते नहीं है, देना है तो अच्छे घी में दो, ये तो नाटक करो ही मत किसी का, ऐसा हमारा नियम है। तो गाय के शुद्ध घी में ही वो बाती को भिगाते हैं हम लोग, और वहाँ पर सब लगा के रखते हैं मस्त में, कैंडल वन सब रेडी, और जला के भी कभी कभी देते हैं 2 बजे हो गया तो भी शाम को आपको जला के ले रहे हैं, लेकिन रेडीमेड मिलेगा आपको। खाली मंदिर में जाना है और अब दीपक 4 बार घुमा के आना है, उतना आपका एनर्जी आपको देना है, कितनी कैलरी होगी गिन लो आप। कोई करता है क्या आज की दुनिया में? किसी को पढ़िए क्या आपका भला किसमें है और क्या, कोई परवाह नहीं करता है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा है इसलिए हमारे यहाँ पर हम भूल सकते हैं, लेकिन आपको लोग बोलेंगे अरे माता जी 5 बज गया कहाँ जा रहे हो, जरा दीपदान करके जाओ, तो आप तुरंत भूल गए, बिजी हो, फिर जाएंगे तो हाथ में घुमाएंगे और वापस चले जाएंगे। ये सौभाग्य जो आपको मिल रहा है ना, इसका कारण यह है कि निश्चित रूप से आप लोगों ने पिछले जन्मों में कई सारे पुण्य किए हैं, इसलिए भगवान आपके पीछे भाग रहे हैं, जो आपको भागना चाहिए भगवान के पीछे, लेकिन भगवान आपके पीछे भाग रहे हैं, याद करा रहे हैं आपको ये करो वो करो ऐसे करो वो करो, यहाँ नौकरी दिया आपको, इसी जॉब के अंदर गोवर्धन पूजा का फेस्टिवल मिलता है आपको, दीपावली का फेस्टिवल मिलता है, जन्माष्टमी का मिलता है, कोई जॉब के अंदर ही है वो। कुछ लोग नाइट शिफ्ट में हो तो वो आते ही नहीं उसके अंदर, जो डे में वही आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको रात नाइट के शिफ्ट में प्रसाद रखते हैं जन्माष्टमी का, इतना ख्याल रखते हैं, प्रभुपाद जी की की कृपा है ये। अभी इतना करने पर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, और भगवान क्या कर सकते हैं, कर ही कह सकते हो, इतना तो कर रहे हो, इतना भी कोई करता नहीं, आप भगवान आपके लिए कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हम कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, हमारे लिए भी वही कर रहे हैं, आपके लिए भी वही कर रहे हैं, लेकिन करना चाहिए हमको। मनुष्य जीवन का लाभ क्या है फिर? और यहां पर आप एक साल भी काम करोगे ना तो सारे उत्सव आपको मिलेंगे एक साल के अंदर। फिर कहीं शादी हो गई, नौकरी छोड़ के चले गए और कहीं नौकरी ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ का जो भेंट आपके लिए है वो अगर मैं जीवन भर के लिए स्वीकार किया ना तो आपका जीवन धन्य है, जीवन भर खुशबू देगा आपको यहाँ का ज्ञान, और यहाँ का आपका स्टे जो है ना वो जीवन भर लाभ देगा आपको। और ये महीने में क्या क्या नहीं हुआ है भगवान के विषय में, दीपावली में भगवान ने नरकासुर का वध किया, फिर गोवर्धन की पूजा इसी महीने में हुई, इसी महीने भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन को उठाए रखा, इसी महीने में नीचे रखा, इसी महीने में गोविंद कुंड का निर्माण हुआ, इसी महीने में बलि महाराज दुनिया को देखने के लिए ऊपर आते हैं, इसी महीने में यमराज यमुना के अंदर स्नान करने से क्या कहते हैं उसको, जन्म मृत्यु की श्रृंखला टूट जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, राधा कुंड श्याम कुंड का आविर्भाव इसी महीने में हुआ है, गोपाष्टमी इसी महीने में है, कार्तिक पूर्णिमा तुलसी महारानी का विवाह संस्कार भी इसी महीने में हुआ है, यशोदा माता की का गर्भवास भी इसी महीने में हुआ है। कार्तिक महीने के पूर्णिमा के दिन यशोदा माता कृष्ण के लिए गर्भवती हुई थी। कितने सारे उत्सव इस महीने में भगवान ने बनाए। प्रभु रामचंद्र इसी महीने में अयोध्या में प्रवेश किए, इसलिए दीपावली हम लोग मनाते हैं। दीपक का कहाँ से शुरू हुआ? एक तो भगवान का, कृष्ण का तो है ही, लेकिन राम भगवान जब वनवास समाप्त करके उसी दिन दीपावली के दिन अयोध्या में प्रवेश किए थे उन्होंने, तो अयोध्या वासियों ने सब जगह दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। और क्या हुआ था बताइए इस महीने में? भगवान को यशोदा मैया ने बांधा था। ये तो सेंट्रल लीला है इस महीने की, मेन लीला वही है, नाम ही पड़ा है उसका, उस लीला के ऊपर दामोदर मंथ। इसके गीत गाते हैं लोग कि मैना मैया ने भगवान को बांधा, जो सब दुनिया को बांधते हैं उसको मैया दोरी से बांधती है। देखो क्या चमत्कार है प्रेम का, जिसकी पकड़ में कोई नहीं आता है, हमें जिसको पकड़ने में कोई समर्थ नहीं है, जो किसी के पकड़ में नहीं आता है उसको मैया पकड़ती है और बाद में बांध भी देती है उसको। इतना महात्म्य है इस महीने का। भगवान बार बार बता रहे हैं कि मुझे तुम ना ऐश्वर्य मत दिखाओ, अपना अपना पावर मत दिखाओ, अपना पोजीशन मत दिखाओ, वो तो मैंने तुमको दिया है, मेरी दी हुई चीज मुझे को दिखा के इतना क्यों आप घमंड करते हो? आप वो चीज दिखाओ जो आपकी है। वो कौन सी चीज आपकी है? आपका प्रेम और आपका भक्ति आपका है, बाकी सब तो दीपक भी उनका है, घी भी उनका है, गाय भी उनकी है, सब कुछ उनका है, बुद्धि भी उन्होंने दी है, शक्ति भी उन्होंने दी है, आपका क्या है उसके अंदर? सब तो उधार का माल है पूरा आपके पास। लेकिन उधार के माल के साथ जब आपका खुद का प्रेम जोड़ते हो ना तो उधार का माल भगवान देखते नहीं है, प्रेम को ही देखते, खाली उसी को स्वीकार करते हैं। जैसे आप बोलते हो क्या, कौन सी बड़ी बात है, मैंने ही पैसे दिए थे, मेरे ही सेविंग किया तुमने, मेरा ही चॉकलेट है वो। आप चॉकलेट को देखते नहीं है, चॉकलेट के पीछे प्रेम जो है उसको आप देख रहे हो, उसी के लिए 100 चुम्मे लेते हो बच्चे के आप। तो वैसे ही जब आप चॉकलेट खुद नहीं देख रहे हो तो पिताजी क्यों देखेंगे भगवान, कि आपने 10 ml घी का बाती बनाया है कि 1 ml का बनाया है, चांदी का बनाया है दीपक की किसी और में बनाया है, कि मिट्टी का बनाया है, वो देखेंगे नहीं। वो उसके साथ में कितना प्रेम दिया आपने, उसी को देखते हैं वो, उसी को स्वीकार करते हैं, उसका फल देते हैं वो। इतने अच्छे भगवान है हमारे। तो कहीं दावत में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या खाना बनाया था, इतना दूर से हम लोग आए, दाल रोटी खिलाया, कोई मिठाई नहीं, पकवान नहीं, पकौड़ा नहीं, कुछ ये दावत का खाना है। लेकिन भगवान भी गए थे गरीब के घर में खाना खाने के लिए, टाट में बैठकर उसको सुखी सुखी खिलाई थी, उसी समय दूसरे रूप में राजा के घर पे गए थे, वहां पंच पकवान खिलाया था। दोनों जगह भगवान ने बड़े प्रेम से खाया, क्योंकि दोनों ने ही बड़े प्रेम से 56 भोग भी और सुख रुखी सुखी भी बड़े प्रेम से खिलाया था, दोनों जगह बड़े प्रेम से भगवान ने खाया। तो भगवान भेदभाव नहीं करते हैं कि ये गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है, ये अच्छा सीखने वाला आदमी है, ये तो प्रसिद्ध है, ये तो सामान्य आदमी है, भगवान नहीं देखते उसको। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं, और वही प्रेम जब जनवरी में देंगे तो उसका एक फल मिलेगा, कार्तिक में देंगे तो 1,00,000 गुना फल मिलेगा। इसलिए बिजनेस भी करना है तो अच्छा महीना ये। हाँ, बिजनेस के भाव से भी जाएंगे तो बेनिफिट है इसमें, करो, छोड़ो मत उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों को कार्तिक महीने के व्रत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप लोग जो फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है उसका लाभ लेंगे। और एक विशेष बात है, अधिक मास जब आया था ना तो उसमें 5 बुधवार आए थे, मतलब क्या प्रभात जागृति 5 कार्यक्रम हुए थे। इस बार भी बुधवार को ही कार्तिक मास शुरू हो रहा है और बुधवार 5 आ रहे हैं इसके अंदर। तो सुबह के समय पे आप आएंगे, यहाँ पर आपको दीपदान का मौका मिलेगा, कथा सुनने को मिलेगी, और हर चीज का 1-1 लाख गुना लाभ मिलेगा आपको। आप आएंगे जब करेंगे तो उसका 1 लाख गुना, कथा सुनेंगे उसका 1 लाख गुना, प्रसाद पाएंगे तो भी उसका 1 लाख गुना, दीपदान का भी 1 लाख गुना, हर चीज का 1 लाख गुना लाभ मिलेगा, वो भी मुफ्त में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।